ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आज मनाया गया जेंजी शहीद दिवस। रचनात्मक खबरदारी और कार्य संपादन की समीक्षा निरंतर जारी रखने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने का आग्रह। भोटेकोसी बाढ़ में अब तक 1364 लोगों की मौत की पुष्टि। धादिंग के कृष्णभीर में अवरूद्ध सड़क को सुचारू करने में अभी 10 दिन और लगने का अनुमान। और भारत बांग्लादेश रेल सेवा पुनः शुरू करने को लेकर वार्ता। अब समाचार विस्तार से। जेंजी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं की स्मृति में आज नेपाल में पहली बार जेंजी शहीद दिवस मनाया गया। दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीदों के योगदान को स्मरण करते हुए प्रौद्योगिकी, नवाचार और परिवर्तन की नई सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने कहा है कि सड़क से नवयुवाओं द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देने की जगह पर समय ने उन्हें खड़ा कर दिया है। सभापति लामिछाने ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जेंजी आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक दल के आह्वान पर हुआ आंदोलन नहीं था। सभापति लामिछाने ने बदलाव के लिए अब इस देश में किसी भी मां की गोद सुनी न हो ऐसी कामना करते हुए नागरिक अधिकार, विधि का शासन और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की मांग करते हुए आवाज उठाने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी अमर शहीदों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने आंदोलन के दौरान अंग भंग होने वाले, घायल होने वाले तथा मानसिक एवं शारीरिक चोट झेलने वाले सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राज्य संबंधित परिवारों की उचित देखभाल, घायलों का पूर्ण उपचार तथा दीर्घकालीन पूर्व स्थापना की जिम्मेदारी पूरी करेगा। सभापति लामिछाने ने सभी युवाओं, नागरिक समाज और आम जन समुदाय से रचनात्मक निगरानी बनाए रखने तथा कार्य संपादन के निर्मम समीक्षा निरंतर जारी रखने का भी अनुरोध किया है। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने कहा है कि सरकार जेंजी आंदोलन में शहादत देने वाले शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेंजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज द्वारा आयोजित स्मृति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन कायम करने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गृहमंत्री गुरुंग ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा, देश में सुशासन कायम होगा और भ्रष्टाचार का अंत होगा। हमारी मांगे और सपने पूरे नहीं होने हैं तो देश में एक और गोली चलनी चाहिए, वही भी मेरे सिर से। उन्होंने कहा कि अब तक उनके शरीर में प्राण है, वे किसी नेपाली को दुख नहीं होने देंगे। उन्होंने जेंजी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी और सुशासन की मांग को सरकार गंभीरता से लागू करने का प्रयास कर रही है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि पिछले वर्ष जेंजी विद्रोह के दौरान युवाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जेंजी शहीद दिवस के अवसर पर आज रेडियो नेपाल से बात करते हुए संचार मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि जेंजी विद्रोह की नींव पर बनी वर्तमान सरकार युवाओं की मांग के अनुसार देश में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करते हुए सुशासन कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन भाद्र 10 गते आई अप्रत्याशित बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की खोज, बचाव और राहत कार्य में फिलहाल केंद्रित है। इसके बावजूद सरकार अपने मिशन से पीछे नहीं हटी है और लगातार इस दिशा में काम करती रहेगी। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित नागरिकों को केंद्र में रखकर राहत बचाव तथा पुनर्स्थापना का कार्य प्रभावी बनाने का आग्रह किया है। नुआकोट स्थित होल्डिंग सेंटर के निरीक्षण के दौरान सभामुख अर्याल ने कहा कि राहत वितरण में एक द्वार प्रणाली लागू कर स्थानीय तह के वार्डो के माध्यम से राहत सामग्री वितरित की जानी चाहिए। रसुआ की भोटेकोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1364 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूना संग्रह सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब तक 1140 शवों को जमीन के नीचे सुरक्षित रूप से दफनाया गया है। शवों की पहचान के लिए मृतकों के 1280 और उनके परिजनों के 1412 सहित कुल 2692 डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। इसी तरह पहचान नहीं हो सके 1310 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। नेपाल पुलिस के अनुसार अब तक लापता 4077 लोगों की तलाश जारी है। इसी तरह विभिन्न जिलों में बनाए गए होल्डिंग सेंटरों में 3245 लोगों को रखा गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
सजिलो छ है एन्टी एप, अहिले नै डाउनलोड गर, 1 GB डेटा फ्रीमा प्राप्त गर।
हातमा एन्टी एप छ त सजिलो सुविधा लिन,
रिचार्ज गर्न होस् या ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न, अल डिटेल डेटा भोइसको स्ट्याटस थाहा पाउन, गिफ्ट प्याक पठाउन वा फाइबर इन्टरनेटको जानकारी पाउन। सजिलो छ है एन्टी एप, अहिले नै डाउनलोड गर, 1 GB डेटा फ्रीमा प्राप्त गर।
प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। बाढ़ के बाद आपदा के समय सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह, गलत सूचना तथा सामाजिक सहिष्णुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ नेपाल पुलिस सक्रिय हुई है। नेपाल पुलिस ने सामाजिक सहिष्णुता को आघात पहुंचाने वाले अभिव्यक्ति सहित वीडियो सामग्री प्रसारित, पोस्ट या शेयर कर समाज में घृणा, द्वेष और अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की निगरानी और पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के माध्यम से असंबंधित टिप्पणियां कर समाज को भ्रमित नहीं करने का अनुरोध करते हुए नेपाल पुलिस ने निगरानी का काम तेज किया है। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन के तहत वार्ड अधिवेशन आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने इससे पहले वार्ड अधिवेशन 24 गते से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन रसुआ की भोटेकोसी में आई बाढ़ के कारण अधिवेशन को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस निर्वाचन समिति के संयोजक प्रेम बहादुर खड़का ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वार्ड अधिवेशन 3 और 4 आश्विन को आयोजित किया जाएगा। आगामी 7 आश्विन को गांव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका और महानगर पालिका के अधिवेशन होंगे। इसी तरह 10 आश्विन को प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन और प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन संपन्न करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस का केंद्रीय महाधिवेशन आश्विन 16 से 19 तक काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत धादिंग के कृष्णभीर में अवरुद्ध सड़क को पूरी तरह संचालित करने में अभी करीब 10 दिन लगने का अनुमान है। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण तटीय क्षेत्र के कटाव से सड़क नीचे की ओर धंस गई थी। भाद्र 14 गते से बंद सड़क को संचालित करने के लिए पिछले 5 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रैक खोलकर धंसे हुए स्थान के किनारे की ओर से सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। छोटे बड़े मिलाकर प्रतिदिन 7 से 9 डोजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह तेज गति से काम जारी हो रहा है और करीब 10 दिनों में कृष्णभीर की सड़क की मरम्मत कर यातायात संचालित किया जा सकता है। ऐसा नागढुंगा मुगलिंग सड़क परियोजना के कंसंट्रेट फील्ड इंजीनियर अशोक देव कोटा ने बताया है। भूस्खलन के कारण 3 दिनों से बंद करनाली राजमार्ग का सुरखेत खंड फिर से सुचारू हो गया है। रविवार शाम करनाली राजमार्ग के अंतर्गत सुरखेत के बाराहताल गांवपालिका 7 औलीसी से सड़क के ऊपर से आए भूस्खलन के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। 2 दिनों के लगातार प्रयास के बाद सड़क डिवीजन कार्यालय सुरखेत और दैलेख के संयुक्त प्रयास से राजमार्ग को फिर से संचालित किया गया है। लगातार बारिश के बाद विभिन्न स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण 3 दिनों से बंद साफे मातरी सड़क आज से फिर संचालित हो गई है। सड़क विभाग के 2 JCB की मदद से भूस्खलन का मलबा हटाने के बाद सड़क को संचालित किया गया है। ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी डोरेंद्र निरौला ने दी। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय के नजदीक कारागार मोड़, सेलागाड़, सुबाकांद, रापका और बीरेखोला सहित विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन हुआ था। लगातार बारिश के कारण मलबा हटाने में कठिनाई होने से सड़क संचालन में कुछ देरी हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और बांग्लादेश ने स्थगित यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने के विषय पर 3 दिवसीय अंतर सरकारी रेलवे बैठक के माध्यम से वार्ता शुरू की है। बांग्लादेश रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक मोहम्मद नजमुल इस्लाम ने बताया कि यात्री रेल सेवा कब और किन किन मार्गों पर फिर से शुरू की जाएगी, इसका निर्णय बैठक के बाद ही किया जाएगा। उसके अनुसार मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस अगस्त 2024 से स्थगित है। मालवाहक रेल सेवा हालांकि लगातार संचालित हो रही है। बैठक में भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य सहित अधिकारी तथा बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल है। बैठक में वित्तीय हिसाब किताब, बकाया राशि, सीमा पार रेल आवागमन, परिचालन दक्षता, रेल समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। वर्ष 2024 में शेख हसीना की सरकार के अपदस्त होने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ने के साथ यात्री रेल संपर्क प्रभावित हुआ था। फरवरी 2026 में बांग्लादेश ने नई सरकार गठन के बाद संबंधों में सुधार और आवागमन को सुगमन बनाने का प्रयास आगे बढ़ा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज मनाया गया जेएनजी शहीद दिवस। रचनात्मक खबरदारी और कार्य संपादन की समीक्षा निरंतर जारी रखने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने का आग्रह। भोटेकोसी बाढ़ में अब तक 1,364 लोगों की मौत की पुष्टि। धादिंग के कृष्णवीर में अवरुद्ध सड़क को सुचारू करने में अभी 10 दिन और लगेगा समय और भारत बांग्लादेश रेल सेवा पुनः सुचारू करने को लेकर वार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।